जितना सुख आज आपके मरने पर हुआ है। मेरे कोई भय नहीं था, लेकिन अब एक मनुष्य के द्वारा आप मर गए, इस बात से कभी विश्वास भी तो नहीं होता है। और क्या बताएं, आपके शरीर में तो इतने इतने बाण लग गए हैं कि इन बाणों को देख देख करके हमको तो तिल भर भी जगह, चार अंगुल की जगह नहीं मिलती है कि जिसमें आपकी जगह खाली हो। सब जगह आपके बाण हो गए। जहां आपके प्रत्येक शरीर पर आभूषण रहा करते थे, आज राम के द्वारा छोड़े हुए विशेष विशेष बाण आपके शरीर में जगह जगह लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे मिल भी तो नहीं सकती। अच्छा है, ये बाण यदि मुझे भी मार देते तो अच्छा है, इन बाणों से मैं भी मर जाऊं। स्वाविर सललैर यद्वत बाणैर लग्नैर निरंतरम स्वर्पते मर्मसु देशम संचिन्न स्नायु बंधनम। झाउलिया होता है, झाउलिया जिसके कांटे ही कांटे होते हैं शरीर के ऊपर, वो झाउलिया गोल गोल रहता है, उसके ऊपर खूब पानी डालो या पानी में उसको रखो तब वो अपना मुंह यूं खोलता है, तब इतना बड़ा दिखता है, नहीं वो गोल मटोल होता है, उसको झाउलिया बोलते हैं। संस्कृत में उसको स्वाविद बोलते हैं। उसके इतने बड़े बड़े कांटे लगे रहते हैं। वो जब झाउलिया जब रहता है तो कोई सांप उसको मारता नहीं, वो सांप को मारता है, सांप को मारता है और वो जो है गोल गोल हो जाता है। तब वो सांप उसके ऊपर फण लगावे तो वो सांप भी देखता है, फण लगाते ही इसमें जहर तो लगेगा नहीं, और जहर न लग करके और फिर वो जो है दांत उसमें लग जाए, जिसके वो सांप डरता है उससे। तो उसके समान आपका शरीर हो गया, बाणी लगनी निरंतर। इस प्रकार से मैं आपसे कैसे मिलूं? कभी कभी आप देवताओं से युद्ध करने जाते थे और वापस लंका में प्रवेश करते थे तो जोर से आप आकाश में गर्जना करते थे, हम लोग स्वागत के लिए खड़े रहते थे कि अहो प्राणनाथ विजयी होकर आए हैं, अहो आज आपके लिए यमराज में यमलोक में स्वागत हो रहा होगा। अरे नहीं नहीं, आप नहीं मर सकते, ये तो सपना है, सपना, मैं सपना देख रही हूं, नींद में हूं। देखो वो शोक में डूबी भी बोलती है, तुम रामेण कथम अतः, राम के द्वारा मर कैसे सकते हो, मैं तो सपना देख रही हूं, नहीं मर सकते। ओहो आपका प्रभाव, आप तो मृत्यु के भी मृत्यु हो, त्रिलोक संपूर्ण त्रिलोकी के भोक्ता हो, संपूर्ण त्रिलोकी को डराने वाले हो, सब लोकपालों को जीतने वाले हो और शंकर के उस कैलाश पर्वत को उछालने वाले हो, तो शंकर जी भी आपके हाथ में उछलने वाले हैं। आप घमंडी राजाओं को पकड़ पकड़ करके कैद खाने में डालने वाले हो, आप अपने पराक्रम को प्रकट करने वाले हो, आप जो है संपूर्ण लोकों में क्षोभ पैदा करने वाले हो, आप अपने गर्वीले वाक्यों के द्वारा शत्रु के मन में भय पैदा करने वाले हो, आप अपने आश्रित रहने वाले सेवकों की रक्षा करने वाले हो, आप शूर कर्म करने वाले लोगों को मारने वाले हो, प्राणियों को मारने वाले हो, देवता दानव यक्ष इत्यादियों का आप नाश करने वाले हो, आप निवात कवचों का भी नाश करने वाले हो, आप कितने कितने यज्ञों के लोप करने वाले हो, आप अपने स्वजन की रक्षा करने वाले हो और आप माया को बनाने वाले हो, असंख्य असंख्य देवता असुर और मनुष्यों की कन्याओं का हरण करने वाले हो और आप शत्रु की स्त्री को शोक देने वाले हो, क्योंकि शत्रु मर जाएगा तो स्त्री रोएगी, लंका की रक्षा करने वाले हो, ऐसे आपके अलग विचित्र विचित्र प्रभाव, वो आप राम के द्वारा कैसे मारे गए ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। हे प्राणनाथ उठिए उठिए और आप लंका में चलिए। यदि आपने केवल मृत्यु का नाटक ही किया है तो नाटक पूरा हो गया, अब आप उठिए। मेघनाद मरा हुआ मेघनाद आपको बुला रहा है, मैं महाराज अब क्या करूं, आपके बिना लंका में किसको मुंह दिखाऊं, मुझे बड़ी ग्लानी होती है, अब ये लंका के भोग पदार्थ हमारे क्या काम आएंगे। आपने बहुत लंबा रास्ता चुन लिया, इस रास्ते पर चलने के बाद कोई लौट के नहीं आता, इस रास्ते पर आप मुझे भी ले चलते, मैं भी इसी रास्ते पर आपके साथ चलती हुई बड़ी अच्छी लगती है। ओहो, जब विवाह होता है तब पति के पीछे पत्नी चलती है, लेकिन जब मौत होती है तब पति कहीं का कहीं चला जाता है, पत्नी वहीं रह जाती है। मैं इतना विलाप कर रही हूँ, आप मुझ पर जरा सी भी दया नहीं करते, दया करो। और दया करके आप दया करके आप मुझे बचाओ। बहिर निष्पतितान सर्वान कथम दृष्टवा न कुप्यसी। देखो देखो, हम स्त्रियां महलों के अंदर रहने वाली थी, कोई हमको देख नहीं सकता था। आज इतने बानर, इतने राक्षस हम स्त्रियों को, खुले मुंह स्त्रियों को देख रहे हैं, और आप हमको फटकारते नहीं हो। आप लज्जा के द्वारा हमने हमारा जो घूंघट था वो घूंघट आज खोल दिया, आप हमको फटकारते नहीं कि तुम स्त्रियां होकर यहाँ क्यों आई, तुम रणांगण में क्यों आई, चलो यहाँ से अंदर चले जाओ। ऐसे आप हमको क्यों नहीं फटकारते हैं, क्यों नहीं क्रोध में आकर हमको डांटते हैं। ओहो, यास्त्वया विधवा राजन, आपने बहुत से स्त्रियों को विधवा किया है, उसी का ये फल है कि आज हमको विधवा होना पड़ा है। उन स्त्रियों ने यही बात कही कि तुमने हमको विधवा किया है, रावण तेरी स्त्रियां भी विधवा होगी, उसका फल मिल गया। हे नाथ, बहुत पतिव्रता स्त्रियां थी, धर्म में रहने वाली स्त्रियां थी, जो अपने पति की सेवा में, बड़े की सेवा में लगी रहने वाली थी, उन स्त्रियों ने तुमको शाप दिया है, जिसके फल से आज आप रणभूमि में धूली चाट रहे हैं। बार बार उन्होंने शाप दिया है। ओहो, हमारे पूर्वजों ने ये बात बिल्कुल सत्य कही है कि स्त्री का जो आंसू होता है वो मामूली चीज नहीं होता। ध्यान से सुनना हो, पतिव्रता नाम नाकस्मात पतंत्य शून्य भूतले। पतिव्रता की, पतिव्रता स्त्री की जो ये आंखों से अश्रु धारा बहती है, ये अश्रु धारा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। स्त्री जिसके लिए रोती है, जिस बात से क्षुब्ध होकर के पतिव्रता के आंखों में आंसू आते हैं, वो उसके व्यर्थ नहीं जाते, ये बात आपने सत्य करके दिखाई। हे रावण, आपने स्त्री की चोरी की, कितना बड़ा आपके जीवन में कलंक लगा है। आप अपने को इतना शूरवीर मानते थे और आपने स्त्री की चोरी की, और वो भी डर करके की, राम और लक्ष्मण से छिप करके की, और आपने एक राक्षस को, मारीच को, आपने एक मृग का बहाने से उनको दूर ले जा करके ये चालाकी की, और फिर ये अपना स्वरूप बदल करके सीता के पास में जाकर उसके सामने भिक्षा की याचना करके, और फिर आपने उसकी चोरी की। इससे बढ़कर आपके जीवन में और क्या कलंक का काम हो सकता था, इतना आपने कलंक का काम किया। भाग्य विपर्या, भाग विपर्या सानूनम ते पक्व लक्षणम। आपने जो पाप किया था उस पाप का परिपाक आज हो गया, वो पाप अंदर ही अंदर पड़ता रहा, पकता रहा, पकते 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 आज पाप का फल आपके सामने आ गया है। ओहो, अतीत को जानने वाले और भविष्य को जानने वाले, वर्तमान को जानने वाले, हमारे विभीषण सत्यवाणी बोलने वाले, राक्षसों के अंदर जो बड़े समझदार हैं, उन्होंने आपको कितनी बार लंबी सांस ले लेकर के बड़े प्यार से और आत्मीयता से समझाया था कि भाई साहब, ये आपका पाप सारी लंका के लिए विनाश का कारण बनेगा, परंतु आपने उसकी बात के ऊपर विचार नहीं किया। उसका फल आज लंका की क्या दशा हो रही है, सारा राक्षस कुल समाप्त हो गया, एक पतिव्रता के उत्पीड़न से समूल राक्षस कुल नष्ट हो गया। महाराज, मरते मरते आपने अपने बेटे की मौत कान से सुनी, इससे बढ़कर क्या पाप होगा। मरते मरते आपने कितने भाइयों का वध सुना, अपने से छोटों का वध सुना, इससे बढ़कर क्या पाप की बात होगी। नहीं तुम सोचितव्यो में प्रख्यात बल पौरुष है, आपका बल पौरुष बड़ा प्रख्यात है। मैं स्त्री स्वभाव से रोती तो हूं, लेकिन क्या बताऊं, मैं भी अपने कर्म का फल भोग रही हूं, ऐसा ही मान करके मैं सोचती हूं। आपने भाई की बात नहीं मानी, आपने मारीच की बात नहीं मानी, उस मारीच ने आपको सीता हरण के लिए रोका था, आपने भाई कुंभकर्ण की बात नहीं मानी, आपने मेरे बाप की बात नहीं मानी, आपको केवल अपने बल पौरुष पर घमंड था जिसका फल आपको मिल गया। मैं सुमाली की दोहिती हूं, वो किम मामना प्रतिभास से, आप मेरे से क्यों नहीं बोलते हैं? आप अपने शरीर को देखिए तो सही, आपके शरीर की क्या दशा हुई है? आप उठिए, लंका में चलिए, प्रातःकाल हो गया, सूर्य की किरणें लंका में प्रवेश करती हैं। आज बिल्कुल आराम से ये लंका के अंदर प्रवेश कर रही हैं। पहले सूर्य की किरणें आपसे पूछती थी, क्यों महाराज ज्यादा गर्मी लगती हो तो मैं किरणें यहाँ न छोड़ू? कहा नहीं नहीं छोड़ो, तब किरणें आती थी। सूर्य पूछता था, क्यों महाराज ज्यादा सर्दी लगती हो तो अपने किरणों को गर्म करके भेजू? कहा गर्म करके भेजू, तब उस किरणों को गर्म करते थे, किरणों को ठंडा करते थे। आज सूर्य भगवान बिल्कुल साफ साफ बिना आज्ञा से हमारी लंका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रमा आपसे पूछ करके प्रकाश करता था, वायु पूछ करके लंका में आता था, क्यों आऊं? तब आप कहते हैं कि नहीं आओ तो आ जाते। आपका वो परिमाण घोटा कितना कठोर था, वो आपके पास में बिखरा हुआ पड़ा है, राम के बाणों से टूटा हुआ है। मैं इतना आपसे बोल रही हूं, इतनी देर से बोल रही हूं, आप बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। ओहो, आप मर गए इसलिए कैसे बोलेंगे? आपको मरा हुआ देख करके मेरा हृदय फटता नहीं है। ओहो, मैं कितनी कठोर छाती वाली हूं। इत्येवं विलपंती, ऐसा वो विलाप कर रही थी, बार बार रो रही थी, बहुत मोह में डूब गई थी मंदोदरी, स्नेह के अंदर डूबी हुई वो मंदोदरी। उस समय ऐसा मालूम दे रही थी जैसे कोई कमलनी हो और बरसात उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी होती और उससे पानी गिरता हो, ऐसे उसके आंखों से ही पानी गिर रहा था, बहुत कष्ट पा रही थी। इस प्रकार से जब वो रोने लगी, किंते न विदिता देवी लोकानाम स्थिर ध्रुवा, फिर और जो स्त्रियां थी सब मंदोदरी की सौते, वो मंदोदरी को चारों तरफ से घेर के कहती हैं कि हे बहन क्या करें, ये संसार में रीति सदा से चली आ रही है, मरना तो पड़ता ही है, अपने लोगों की ऐसी दुर्दशा अपने दिमाग में अपने भाग्य में लिखी हुई थी, इसलिए आज अपने को दिन देखना पड़ा है। राजाओं की लक्ष्मियां सदाई चंचल हुआ करती हैं। इस प्रकार से सारी स्त्रियां एक साथ रोने लगी, सब शरीर गीला हो गया, कपड़े उनके गीले हो गए, रोते रोते मुंह उनका सबका उतर गया। राम जी महाराज ने विभीषण से कहा, विभीषण इन स्त्रियों को तुम मना करो, रोने से अब कोई लाभ नहीं है, जितना ये धैर्य धारण करेंगी उतना ही इनके लिए शांति की बात बनेगी, और अपने भाई का संस्कार कीजिए। जाओ विभीषण, अपने भाई का संस्कार करना बड़ा पुण्य का काम है, जाओ। नहीं महाराज, जो इतना पापी रहा, अब देखो बोलता है, जो पापी रहा, जिसने धर्म का त्याग कर दिया, जो बड़ा निशंस क्रूर था, जो असत्य बोलने वाला था, जिसने दूसरे की स्त्री का स्पर्श किया, वो मेरा भाई के रूप में शत्रु है, मैं उसके शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहता। रावण मुझसे बड़े जरूर हैं, वो मेरे लिए पूजनीय हो सकते थे लेकिन अब पूजनीय नहीं है। महाराज, जिस समय मैं इसके शरीर का स्पर्श करके इसका अग्नि संस्कार करूंगा तो लोग कहेंगे कि क्यों विभीषण, तुम तो धर्मात्मा थे, पापी का शरीर तुमने क्यों छुआ? मेरे पास कोई जवाब नहीं है महाराज, मैं नहीं जाना चाहता। राम जी ने कहा, विभीषण क्या बोलते हो ऐसे, ये अच्छी बात नहीं है, हमने रावण को जीता है तो केवल हमारी ताकत से नहीं जीता है, आप सब लोगों के सहयोग से हमने जीता है। हे राक्षसराज विभीषण, ये बात मैं बिल्कुल सामर्थ्य के अनुसार सही बात बोलता हूं, ये बात ठीक है कि रावण के द्वारा अधर्म हुआ, रावण के द्वारा झूठ बोलना हुआ, क्योंकि रावण साधु न होकर साधु के रूप में वहां आया, रावण ने बड़ा पाप किया, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि रावण बड़ा तेजस्वी था, किसी के गुण भी तो देखना चाहिए, बलवान था, शूरवीर था, देवताओं से कभी हारा भी नहीं था, देवताओं को अपने वश में रखा हुआ था, ये रावण बड़ा बल संपन्न था, रावणो लोक रावण है, सारे संसार को रुलाता था, इसलिए इसका नाम रावण हुआ। रावयती रावण है, रावयती रावयती माने जो रुलाता है, तो सारे संसार को रुलाता था इसलिए इसका नाम रावण पड़ा। देखो किसी का भी बैर होता है वो मरने के बाद तो उसके बैर को याद नहीं रखना चाहिए, किसी के मरने के बाद उसके बैर को याद रखना ये वास्तव में जिन बुराइयों को हम करते उन बुराइयों को अपने में लाना होता है। किन्हीं की बुराई यदि अपने में लानी हो ना तो उसके बुराई की चर्चा करो, वो बुराई अपने में आ जाएगी, और मरे हुए की तो बुराई बहुत जल्दी आ जाएगी। यदि उसकी निंदा करेंगे ना मरे हुए आदमी की तो उसकी बुराई अपने में आ जाएगी। तो अब इसका अंतिम संस्कार करो और देखो तुम्हारे पास तुम्हारे देख रेख में सारा संस्कार होना चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए। जैसे तुम्हारा भाई है ऐसा ये मेरा भाई है ऐसा समझ के तुम इसका दाह संस्कार करो। ऐसा करने से तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम अपने भाई के चिता के साथ अपने सारे बैर भाव भी इस चिता के अंदर तुम जला दो। भगवान श्री राम के वचनों को सुनकर के विभीषण जी लंका में गए। लंका में जाकर उन्होंने अग्निहोत्र लिया, अग्नि लाए और तरह तरह के काष्ठ वगैरह लोगों के द्वारा भिजवाए, चंदन काष्ठ भिजवाए, बड़े बड़े लकड़े वो जो है लदवा लदवा करके भेजे गए, अगरु सुगंधित पदार्थ चंदन ये सारे पदार्थ वहां पर उपस्थित किए गए और बहुत राक्षस वहां चारों तरफ चिता बनी वहां पर ले जा इकट्ठे हो गए। तब उसके शव को एक बहुत अच्छी सोने की बनी हुई बैकुंठी थी उसके अंदर उसको रखा गया, बड़े अच्छे सफेद वस्त्र नए वस्त्र उसको पहनाए गए और उसमें रावण के शव को रख करके सब लोग रावण का कंधा दिए वे उस स्थल पर ले चलते हैं जहां वहां चिता बनाई थी। बड़े बड़े राक्षस जो उस समय जीवित थे वे अपने अश्रुपूर्ण मुख के द्वारा अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे थे और जो राक्षस धर्म को बताने वाले वहां ब्राह्मण थे वे ब्राह्मण भी वहां पर पहुंच गए। बड़ी ऊंची ऊंची पताकाएं लगाई गई उसके बैकुंठी पर, विभीषण जी महाराज सबसे आगे थे और वे दक्षिणाभिमुख होकर के और वहां अग्नि को प्रज्वलित किए और अग्नि को प्रज्वलित करके वहां पर रावण के शव को रख दिया। उस समय में जितनी रानियां थी सब रानियों ने परिक्रमा की, रावण को प्रणाम किया और रावण को प्रणाम कर करके सब लंका की ओर रवाना होने लगे। रावण के शरीर को जलाने के लिए खूब सा घृत रखा गया, बहुत सी सुगंधित चीजें डाली गई, कितने कितने गाड़े के गाड़े सुगंधित डाले गए। दारू पात्राणी सर्वाणी अरणिम चोत्तरारणिम, और अरणि मंथन करके अग्नि प्रकट की थी इस कारण से बड़ी पवित्र अग्नि थी। शास्त्र की दृष्टि से महर्षियों ने जो विधान बताया है उस महर्षियों के विधान से खूब अच्छे ढंग से वहां पर दाह संस्कार किया। विभीषण जी उनके दाह संस्कार में अंत तक रहे, दाह संस्कार के अंदर पहली पहले अग्नि थी वो विभीषण जी ने दी थी और फिर उसके बाद ये सब वहां से स्नान वगैरह करके नगर में आए और राम जी महाराज के पास में ये विभीषण जी आ गए। राम जी महाराज के पास में आकर उन्होंने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके राम जी महाराज से आगे के कार्य के लिए अनुमति मांगी। इस प्रकार से ततो विमुक्त्वा ससरम शरासनम महेंद्र दत्तम कवचंत तन्मह विमुच्य रोषम रिपु निग्रहात ततः रामस्य सौम्यत्वम उपागतो रिहा। अब उसके बाद राम जी महाराज ने अपना जो कवच वगैरह पहन रखा था वो कवच वगैरह सब खोल दिया और खोल करके रख दिया। सब बानर राम जी के चारों तरफ बैठे हुए हैं और अब जो है राम जी महाराज सोच रहे हैं कि रावण के मर जाने के बाद अब अपने को आगे का क्या काम देखना है। तो उसी समय में देवता गंधर्व दानव वगैरह अपने अपने विमानों से सब लंका में राम जी के पास आए। जब रावण का वध हो गया और बानर वहां पर बड़ा भारी युद्ध किए, सुग्रीव जी महाराज की वहां पर सुग्रीव जी महाराज का विशेष अनुराग देखा, हनुमान जी का अनुराग देखा, लक्ष्मण जी का अनुराग देखा, सीता जी की पतिव्रता धर्म की बात देखी। ये सब देख करके ये देवता वगैरह बड़े हर्षित होकर के दौड़े दौड़े आए और आकर के और चारों तरफ जो है वो राम जी के चारों तरफ विराजमान हो गए। और फिर उसके बाद राम जी महाराज ने मातली से कहा कि मातली, तुमने हमारी बड़ी सहायता की थी, अब ये कवच भी रखो, तुम तुम्हारा रथ ले जाओ, तुम तुम्हारे सारे शस्त्र ले जाओ। तो राम जी ने आज्ञा दे दी तो मातली था अपने रथ और घोड़े को सर ऐसे करके आकाश में ले गए। देखते देखते वो अदृश्य हो गया। राम जी महाराज ने कहा, सुग्रीव आओ, तुम यदि नहीं होते तो रावण पर कैसे विजय प्राप्त होती। सुग्रीव को गले लगाया, सुग्रीव ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपने चरणों में प्रणाम करते देखकर उसे आशीर्वाद दिया। हनुमान जी महाराज राम जी के सामने खड़े थे, हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी महाराज हनुमान को देखकर बड़े खुश हो गए। और उसके बाद भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो ये विभीषण जी हैं, रावण के संस्कार करने के पश्चात अपने पास में खड़े हैं, तुम इनके साथ जाओ, लंका में इनका अभिषेक कराओ। मैं तो लंका में अभी जा नहीं सकता हूं, क्योंकि किसी भी नगर में प्रवेश करने के लिए मेरा अभी वनवास का समय पूरा नहीं हुआ, इसलिए उस नियम के कारण से रुका हुआ प्रवेश मेरा उचित नहीं है। ये मेरे बहुत प्रेमी और अनन्य अनुराग रखने वाले भक्त हैं, इन्होंने हमारा पहले उपकार किया है। विभीष देखो, सुग्रीव को तो हमने पहले राजा बनाया है, बाद में हमने सेवा ली है, लेकिन विभीषण जी महाराज इन्होंने पहले हमारी सेवा की है, अब इनको राज्य मिला है, तो ये पूर्वोपकारी है। देखो जो हमारा पहले उपकार करता है लक्ष्मण, उसको तो भाई कभी भूलना नहीं चाहिए। ये मेरा लक्ष्मण बहुत जरूरी काम है। लक्ष्मण सीता की प्राप्ति होती न होती कोई बात नहीं थी, लेकिन विभीषण को राज्य की प्राप्ति करानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि विभीषण के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, मेरी प्रतिज्ञा को पूरा किया है। इस समय परम काम हो, ये मेरा बहुत जरूरी काम है, मेरी हार्दिक इच्छा है, विभीषण के राज्य के उत्सव पर तुम जाओ और तुम जाकर के विभीषण को राजगद्दी पर बैठाओ। बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मण जी महाराज वहां से रवाना हुए। राम जी ने कहा, सुग्रीव तुम भी जाओ और अपने साथ श्रेष्ठ बंदरों को लेकर के जाओ, आज विभीषण का राज्याभिषेक बहुत सुंदर ढंग से होना चाहिए। इस प्रकार से आज्ञा दी और वहां जाकर के तरह तरह से क्या करना है, ये सामान लेना, वो लाना, ये करना है, सब समुद्रों से जल लेकर के आना है। तो सुग्रीव ने अपने बंदरों से कहा, घड़े दे दिए बड़े बड़े घड़े, जाओ तुम पूर्व समुद्र में जाओ, तुम उत्तर समुद्र में जाओ, तुम पश्चिम समुद्र में जाओ, तुम दक्षिण समुद्र में जाओ, ऐसे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर सब समुद्र में जाने के लिए बोल दिया। और सब बानर उस समय जिनको दिए गए थे कल से, वो कल से भर भर करके ला करके दे दिए। और एक कलश स्वयं लक्ष्मण जी ने अपने हाथ में लिया, जिसमें सब का जल था ही, वो लेकर के उन्होंने विभीषण जी के सिर पर डाल के उससे उनका अभिषेक कराया। और विभीषण जी महाराज को फिर जो है वहां पर राजगद्दी पर बैठा दिया गया। राजगद्दी पर बैठा करके सब जनता बड़ी प्रसन्न हो गई और महाराज राम की, महाराज लक्ष्मण की, महाराज सुग्रीव की और महाराज विभीषण की, इस प्रकार से लंका में खूब आनंद के साथ जय जयकारे होने लगी और अब लंका के राजा विभीषण जी हो गए। उसके बाद राम जी महाराज के पास लक्ष्मण जी, विभीषण जी वगैरह सब आ गए और सब आकर के बैठ गए। देखो विभीषण जी ने सब बंदरों के लिए बहुत सामान लाए, वो लाए तो थे राम जी के लिए, और खूब तो लड्डू लाए, खूब जो है अक्षत लाए, मोदकांश्च लाजाश्च सुमनस, बहुत सामग्री ले लेकर के आए और राम जी के सामने रखा। लो महाराज, राम जी ने कहा, लो ये बंदरों खूब लड्डू खाओ और खूब है ये चावल खाओ, खूब लाजा है लाजा को खाओ, खूब पुष्प लाए तो सब बंदरों के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर दी, तो सब बंदर बड़े आनंदित हो गए, खूब खाए पिए और सब राम जी के पास में अब विराजमान हो गए। विराजमान होकर के अब राम जी के ऊपर प्रतीक्षा करेंगे, अब राम जी आगे के लिए क्या आदेश देते हैं। सब वहां पर बैठे हुए हैं और राम जी से सब आदेश का आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं और राम जी महाराज इनको क्या आदेश देते हैं, ये भाई मध्यम विश्राम के बाद आगे की कथा में कहा जाएगा।
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलं।
वाल्मीकि जी महाराज ने इस रामायण की रचना करके अनंत अनंत जीवों का, अनंत अनंत जन्मों तक का अनंत अनंत फल प्रदान किया है, बड़ा उद्धार का काम किया है। वाल्मीकि जी महाराज ने अपना ज्ञान, अपनी तपस्या, अपना जो कुछ था वो इसके अंदर सुनिश्चित कर दिया। वाल्मीकि रामायण से वाल्मीकि जी महाराज के ज्ञान वैभव का ज्ञान होता है। लंका के अंदर रावण का जब अंतिम संस्कार हो गया और महाराज श्री राम के आदेश से विभीषण जी का राज्याभिषेक हो गया, तत्पश्चात सभी लोग भगवान श्री राम के पास आगे के कार्य की प्रतीक्षा करते हुए बैठे हैं। विभीषण जी भी वही हैं, सुग्रीव जी भी वही हैं, हनुमान तो हैं ही, अंगद आदि सब बानर बैठे हुए हैं और सबकी नजरों में आज भगवान राम की एक निराली शोभा उतर रही है। इसी बीच भगवान श्री राम ने हनुमान को थोड़ा अपने पास बुलाकर कहा कि हे सौम्य, तुम लंकेश्वर महाराज विभीषण के आदेश से लंका में प्रवेश करो और जनक निंदिनी सीता को जाकर हम लोगों का कुशल क्षेम सुनाओ, मेरा कुशल क्षेम सुनाओ, लक्ष्मण का कुशल क्षेम सुनाओ, सुग्रीव का कुशल क्षेम सुनाओ। सीता से बड़े उत्साह के साथ कहना कि हे सीते, तुम्हारे हृदय की शूल को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया है। रावण इस लंका के अंदर रणभूमि में मर करके ऊंचे लोक में चला गया है। हनुमान उसके बाद सीता क्या बोलती है वो वचन तुम आकर मुझे सुनाओ और उसका संदेश लेकर आओ। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज ने राम जी की वंदना की और राम जी के आदेश के अनुसार उन्होंने विभीषण जी से लंका में प्रवेश की आज्ञा मांगी। विभीषण जी ने बड़े संकोच के साथ हनुमान जी को आज्ञा दी। संकोच किस बात का, कि राज्य राम जी का, ये सब कुछ राम का है और आज लंका में प्रवेश करने के लिए मुझसे आज्ञा मांगनी पड़ती है, ये प्यार भरा प्रेम भरा संकोच था, इस संकोच के कारण उन्होंने हनुमान को जाने की आज्ञा दी और हनुमान जी महाराज सीधे अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में सीता को देखा, जिस प्रकार से रोहिणी किसी वृक्ष की टहनी पर लटक जाए ऐसे सीता को देखा, जैसे डरी हुई रोहिणी होती है ऐसे सीता को देखा, शोभाहीन जैसे रोहिणी होती है ऐसे सीता को देखा। चारों तरफ उसके राक्षसियां बैठी हुई हैं और सीता वहां सोच में डूबी हुई है। हनुमान जी महाराज